आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
आपने अपना बना लिया है,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। या इस गीत सुनने के बाद जो दिल से आवाज निकल रही है, ओम आनंद, वह मेरा भाग्य, वह हम सबके सुंदर जीवन की तस्वीर और ऊंची तकदीर। भगवान ने हमको अपना बना लिया है, भाग्य सितारा चमका दिया है। भगवान ने जिसको अपना बना लिया हो, परमपिता परमात्मा जिसका पिता हो, विश्व कल्याणकारी जिसका सदा रक्षक हो, भाग्य विधाता जिसके साथ हो, उनके जीवन की प्राप्ति का क्या कहना। बाबा ने हमको अपना बनाया और हमने बाबा को अपना बनाया। बाबा ने तो बनाया अनादि अविनाशी आत्मा के नाते, हम सब उस पिता परमात्मा की संतान हैं। परंतु संगम पर जब ब्रह्मा द्वारा बाबा ने अपना बनाया, ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया, तो बाबा के पास जो भी प्रॉपर्टी है, भाग्य विधाता के पास जितना भी ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व प्राप्तियों का खजाना है, जन्म लेते ही हम भिखारी से अधिकारी बन गए। जैसे कल बाबा ने कहा, एक दिन का बच्चा भी अधिकारी है। ऐसे नहीं कि एक साल के बाद जन्म लेते कहा जाता है वारिस आया है। भक्ति में क्योंकि हम विकारी थे तो पुजारी थे, और विकारों के कारण बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझ दी है कि दुख अशांति रोग कर्मों का हिसाब किताब अनेक प्रकार का दुख जीवन में बढ़ता ही चला गया। तन का रोग, मन की अशांति, धन में करप्शन, तो प्राप्ति होते हुए भी भय, अथवा कहेंगे धन की कमी, संबंध अथवा संसार के समाज की परेशानी, प्रकृति का प्रकोप, गवर्नमेंट का भय, कर्मों का हिसाब किताब, सब प्रकार से आत्माएं पीड़ित हो चुकी थी। बाबा ने आते ही बाबा कहते मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का अधिकारी बना देता हूं। जैसे ही सूर्य चढ़ता है तो जैसे रात भर का अंधेरा फिर से रात नहीं लेता अंधेरे को समाप्त करने के लिए, अंधेरे के कॉन्ट्रास्ट में सूर्य की लालिमा आकाश में एक सुंदर सुनहरे चित्र का चित्रकार की तरह आकर्षण में चित्र प्रकट कर देती है। लाइट जगी, अंधेरा भाग गया। ऐसे ही जैसे ही बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया तो पहले जो देह के भान अथवा अपने बारे में अज्ञान था, अपने बारे में ज्ञान बहुत था परंतु अज्ञान में ज्ञान था, अपने नाम की प्राप्ति की, पोजीशन की, परिवार की ये जानकारी तो थी परंतु अज्ञान भरी थी। तो इसीलिए उस जीवन में कोई सुख और आनंद मनुष्यात्मा को नहीं मिला। ये हम बच्चों को अच्छी तरह से समझ बाबा ने दी है। तो बाबा मिलते ही हमको सर्व प्राप्तियों का अनुभव हुआ और प्राप्ति होते ही बाबा ने स्वमान में टिका दिया। देह भान से आत्मस्थिति में स्थित होते ही आत्मा ने जान लिया, मान लिया मैं कौन, मेरा कौन। जब मेरा कौन कहा तो अभिमान नहीं परंतु एक रूहानी नशा चढ़ गया जिसका साथी है भगवान, जो इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने वाली आत्मा, ईश्वरीय संतान, विष्णु कुल वाली आत्मा, देव कुल वाली आत्मा, उनके पास किस चीज की कमी। तो कमी भी खत्म हो गई, कमजोरी भी खत्म हो गई, आत्मा को महसूसता आने लगी। स्वाभाविक रीति से संस्कार परिवर्तन होने लगे। तो परमपिता परमात्मा की पहली देन ज्ञान मिलते ही, अज्ञान की तो समाप्ति हो रही है और हो गई है, और जितना जितना ज्ञान मिलता चला जाता है ज्ञान गुण रूप में बदलता जाता है, और जितना गुण रूप में बदलता जाता है उतना स्वमान ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर इमर्ज होता जाता है। तो बाबा हम बच्चों को अपना बना के जो अपनी चीज है उसके में फिर हमको भी दाता बना रहे हैं। जो हमको मिला वो केवल अपने लिए नहीं, ये स्वाभाविक रीति से है। दीवा जगता है तो दीवे की रोशनी प्रकाशित करने के लिए अंधेरे को खत्म करने की होती है। फूल खिलता है, सुगंधित फूल की सुगंध सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वातावरण को बदलने के लिए होती है। सूर्य की गर्मी सिर्फ अपने लिए नहीं है, प्रकृति के पौधों को, मनुष्यात्मा को सर्व प्रकार से शक्ति देने के लिए होती है। तो जब प्रकृति का स्वाभाविक एक प्रॉपर्टी है प्रकृति में, संपन्न होते दूसरों को संपन्न बनाती है। तो बाबा हम बच्चों को मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और देवता का मतलब देता है, जो देवता पहले मांगता थे, मनुष्य थे तो लेवता थे, लेने की इच्छा रहती थी। अभी बाबा मनुष्य देवता बना रहे हैं तो है हर एक के लिए यही भावना है कि जो बाबा से हमको मिला है वो दूसरी आत्माओं को देवें। इसलिए रोज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कितनी बातें ध्यान पर दिलाते हैं, कितनी सारी रोज शिक्षाएं देते हैं। हम बाबा के साथ क्या कर रहे हैं? बाबा के बच्चे बनने के बाद ऑटोमेटिकली जो पेरेंट्स के संस्कार हैं वो बच्चों के संस्कार बन जाते हैं। संस्कार जो हैं, चार प्रकार से संस्कार बनते हैं। संस्कार जिस घर में बच्चा पैदा होता है, राजकुल में पैदा होता है तो रॉयल संस्कार हैं, देशभक्त में घर में पैदा होता है तो देशभक्ति के संस्कार आते हैं, भक्त के भर परिवार में पैदा होता है तो कुछ ना कुछ भावना भक्ति की होती है। तो घर के वातावरण के अनुसार बच्चे में स्वाभाविक रीति से संस्कार आते हैं। तो ईश्वरीय परिवार के जब हम बन जाते हैं, ईश्वर की संतान बन जाते हैं, परमपिता परमात्मा की संतान एक निश्चय कर लेते हैं अपने आप को, तो हमारा संस्कार, विश्व कल्याण का संस्कार, ब्राह्मणों का संस्कार, श्रेष्ठ कर्म करने का तो भक्ति में भी चला आता है, परंतु हम विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हर एक को अंदर यही रहता है, मैं बाबा का संदेश सबको दूं, मैं कुछ सेवा जरूर करूं, किसी भी प्रकार से बाबा का संदेश सबको मिले। और आज जैसे ज्योत से ज्योत जगती है, दीवे से दीवा जगता है, एक से अनेकों की ज्योत जगते जगते आज आप देखेंगे लाखों घरों में दिवाली हो गई, इतने सेंटरों में हर एक का दीवा जग गया, अंधेरे से जो भटक रहे थे, अंधकार में थे, बाबा ने न केवल अपना जीवन प्रकाशित किया परंतु दूसरों को भी प्रकाशित करने का एक अंदर में उत्साह आ गया, उमंग आ गया, जो मुझे मिला है वो मैं अपने भाइयों को जरूर दूं। तो सतयुग के देवता तो बाद में बनेंगे, परंतु अभी भी बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे समय की पुकार है, दाता बनो। दाता बनना है तो देवता बनने के संस्कार ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जब सतयुग में हम देवता हैं तो तब तो हर एक आत्मा के नेचुरली संस्कार में, विचार में, व्यवहार में गुणों का ही आदान प्रदान है, देने की भावना की बात नहीं, स्वाभाविक रीति से जो स्वभावी है वो उसका उनका स्वभावी शांत प्रेम, पवित्रता, आनंद और कुछ है ही नहीं, तो नेचुरल रीति से वहां तो लेन देन, क्योंकि गुणों का लेन देन है, तो जहां गुणों का लेन देन एक दो से होता है वहां बंधन नहीं होता, वहां संबंध होता है। इसीलिए हम जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हैं। तो आज बाबा ने कहा कि वास्तव में श्री कृष्ण को भी दैवी गुण वाला मनुष्य कहेंगे। मनुष्य जीवन में होते जीवन मुक्त पद की प्राप्ति, क्योंकि हर प्रकार से मुक्त है। हम सब आत्माएं जो बाबा से प्राप्त करते हैं तो तन के रोगों से मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि इस समय प्रकृति जो हमारी उसको पवित्र बना रहे हैं। हम इस समय प्रकृति को यानी अपनी कर्म इंद्रियों को कर्म योगी बनकर जब शुद्ध बनाते हैं तो विकर्म के आधार से ही विकर्म का ही फल दुख है। विकर्म है ही नहीं, सुकर्म करने की वहां जरूरत नहीं है। तो इस समय श्रेष्ठ कर्म का फल मिल रहा है, तन निरोगी है, सुंदर काया है, आयु लंबी है, परंतु देह का भान नहीं है। यहां किसकी सुंदर काया है तो अभिमान होगा, संपत्ति बहुत होगी अहंकार होगा, पोजीशन ऊंची होगी बड़े छोटे का भाव होगा। तो वहां पर क्योंकि नेचुरल दिव्यता है इसीलिए सब संपत्ति होते हुए भी हम स्वाभाविक रीति से एक दो को खुशी देते हैं, खुशी लेते हैं, सुख का जीवन जीते हैं। तो ये हमारे संस्कारों में सुख के संस्कार हम लेके जा रहे हैं। एक बारी बाबा के पास, बहुत पहले की बात है, एक सहारनपुर का ग्रुप आया था। उस समय बाबा का कमरा, जो अभी तो बाबा का कमरा तीन गुना बड़ा है, छोटा ही कमरा था। ये मैं समझती हूँ अर्ली सिक्सटीज की बात मैं बता रही हूँ। तो उस समय इतना सुंदर सौभाग्य था, बाबा के पास कभी भी चले जाते थे। बाबा नाश्ता कर रहे हैं, कभी अंदर जाग के देखा, बाबा कहते आओ बच्ची आओ नाश्ता की है, बाबा नहीं हम जा रहे हैं नाश्ता करने, आओ आओ बच्ची आओ। तो जैसे माँ बाप के साथ बच्चे प्यार से बैठ जाते हैं, बाबा अपने साथ कभी नाश्ता करा लेते। शाम को आए, बाबा सूप पी रहे हैं, बच्ची सूप पी है, बाबा आप पीजिए, नहीं 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 बच्ची आओ देखो टेस्ट तो करो। तो यानी एक ऐसा नहीं कोई गुरु का रूप हो, ऐसा नहीं, माँ बाप का अनुभव, तो बच्चे और परिवार, रियली परिवार, ईश्वरीय प्यार का अनुभव, बहुत नजदीकी का अनुभव। परंतु जैसे परमात्मा बाबा हमको माता पिता के रूप में पालना है देते, टीचर रूप में भी उतने ही प्यार से देते। तो मैं बता रही थी कि हम जैसे ही अंदर झांक के देखा तो छोटा ग्रुप, आठ का ही ग्रुप था। तो आठ बैठते हैं अगर बाबा के कमरे में उस समय, तो बाबा की गद्दी है, बाबा की खटिया है, उसके बीच में तो थोड़ी जगह है बैठने की। तो हमने थोड़ा संकोच किया अंदर आने का, कहा बच्ची आओ आओ। तो मैं, बाबा समझ गए मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठूंगी कहाँ, एक जगह रूम तो फुल है, कहा बच्ची यहाँ बैठ जाओ। बाबा ने इशारा किया अपनी खटिया पर, एक यहाँ बैठो। अभी कोई गुरु होवे तो होवे ना, गुरुजी महाराज बैठे हैं हम ऊंचे, वो तो नीचे बैठे हैं, ऊपर कैसे बैठे। पर नेचुरल रीति से भगवान ने हमको अपना बच्चा बना लिया है, हम उसकी गोद में बैठे हैं, घर में बच्चे बैठे हैं, माँ बाप नीचे बैठे हैं, बच्चे सोफे पर बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग। तो आधा खड़ा हुआ आधा बैठे हम खटिया पर ऐसे ही सहारा लेकर के बैठ गए। उन्होंने प्रश्न पूछा, बाबा जब मनुष्यात्माएं अंत के समय अपने पाप कर्मों का पश्चाताप करके सजाएं खा करके रियलाइज करके अपने पाप कर्मों को तो धो लेंगी, वो तो साफ हो गई ना, और आप क्षमा के सागर बाप ने उनको माफ भी कर दिया, वो साफ भी हो गई। उनके क्षमा के सागर बाप ने कोई भी बात थी तो माफ भी हो गई, फिर भला वो सतयुगी दुनिया में क्यों नहीं आएंगी? उनको भी तो स्वर्ग में आना चाहिए। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, उनको जवाब दिया कि बच्ची आपका जवाब देगी, हमको हमारी तरफ इशारा करते। हमने कहा बाबा प्रश्न आपसे पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा इसलिए आप जवाब दीजिए। बाबा ने फिर से कहा बच्ची बाबा कहते हैं बच्ची जवाब देगी इनके प्रश्न का। अब बाबा के सामने ज्ञान सुनाए यानी संकोच होता है, नहीं सुनाए बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि बच्ची सुनाएगी। तो उस दिन धोबी घाट था, तो बाबा कोई भी कर्म योगी कैसे बनना होता है, कर्म योग, कर्म और योग में कोई अंतर नहीं है, योग में कर्म है, कर्म में योग है, इक्वली बैलेंस्ड लाइफ है, उसमें ब्लिस समाया हुआ है, कर्म में कोई प्रकार की मेहनत नहीं है। वो बाबा के चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल जो बाबा ने कर्म करते योग में रह के कर्म किया, आज वो सीन हमारे लिए योग लगाने का साधन बन गया, क्योंकि बाबा ने प्रैक्टिकल में कितना प्यार से हर बाबा की याद में, याद में जो कर्म करते हैं उसमें प्यार भरा हुआ होता है, बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं, बाबा के बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा का मेवा दुआएं मिलती हैं, ये ज्ञान तो है परंतु सेवा दिल से करते हैं। तो उस दिन क्या था, क्योंकि बाबा तो हमेशा कर्म में सहयोग देते थे, अनाज साफ होता था तो अनाज साफ करने बैठ जाते थे, और बाबा को देख के हम सब बच्चे भी बैठ जाते थे, तो जो कार्य एक बोरी आधे घंटे में साफ होनी है दो तीन बहने या भाई कर रहे हैं, और बाबा के साथ बैठे सारा झुंड चला गया कुछ ही मिनट में, मशीन की तरह अनाज साफ हो गया। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ साफ करते हुए भी, ज्ञान का विचार कैसे चलना चाहिए, मंथन कैसे करना चाहिए, कर्म में ज्ञान भी समाया हुआ हो, योग भी समाया हुआ हो, आपसी वातावरण बड़ा स्नेह का वार्तालाप बड़ा अच्छा हो। तो कभी कभी जब अनाज साफ होता था तो नेचुरली अगर गेहूं में सुरसुरी लगी हुई है तो बाहर सारी दिखाई पड़ती थी जब छानते थे, तो बाबा कहते थे बच्ची देखो इसमें कीड़ा लग गया ना, खाली हो गई ना, अब ये खाली तो अनाज दोबारा नहीं पैदा करेगी। तो ऐसे आत्मा में जब चिंता का कीड़ा लग जाता है, जब विकारों का कीड़ा लग जाता है तो फल कुछ नहीं होता है। बाबा तो तुम बच्चों को इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को बाबा भरपूर कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, कभी भी चिंता का कीड़ा न लगे, पार पाना था पार ब्रह्म परमेश्वर को, अब किस बात की परवाह। तो ज्ञान सार कर्तव्य करते हुए भी ज्ञान का भी मंथन हो, योग भी रहे, कर्तव्य करते वातावरण भी बड़ा सुंदर रहे, मेहनत वाला ना लगे, खुशी का एटमॉस्फेयर रहे, ये बाबा का एक हम बच्चों को एक स्वाभाविक रीति से तरीका था सिखाने का। उस दिन धोबी घाट था तो बाबा की सिखाई हुई बात ही सामने आ गई, तो हमने कहा बाबा आज धोबी घाट था ना, आज कपड़े साफ हुए, चादरें भी थी, तकियों के गिलाफ थे, रजाई के गिलाफ थे, सब धुलाई हुआ, उसमें लट्ठा भी था, खद्दर की भी चादरें थी, मलमल के भी कपड़े थे, पर्दों के भी अलग अलग मोटे पतले सब कपड़े थे, कपड़े तो धुलाई हो गए, मैल तो साफ हो गई परंतु उनकी क्वालिटी तो नहीं बदली। तो ऐसे ही बेशक सब आत्माएं अंत में अपने पाप कर्मों को माफ करा के या पश्चाताप से साफ करके जाएंगी, परंतु उनको तो जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो तो सर्वगुण संपन्न बन करके जाती हैं, वो तो सोलह कला संपूर्ण बन के जाती हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन करके जाती हैं। तो उनको ये प्रभु की देन नहीं मिली, क्षमा तो हो गई, माफी तो हो गई, परंतु प्रभु के प्यार से जो अपने जीवन का सुधार होना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं, क्वालिटी तो नहीं बदली। आप तो हमको शूद्र से ब्राह्मण बना के श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हो, पढ़ाई पढ़ा करके देवता बना रहे हो, योग सिखा करके पाप कर्मों को भस्म करने की शिक्षा दे रहे हो, तो परिवर्तन धुलाई में के तरीके में अंतर है। वो आत्माएं तो फिर बाबा ने कहा ठीक बच्ची ये तो ठीक, परंतु सतयुगी दुनिया में जाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, संस्कार अनुसार जन्म होता है। तो उन आत्माओं में जो गई ना पश्चाताप से, वो खुशी से नहीं गई, अंते मति सोगति, संस्कार जो है वो पश्चाताप से हुए, ओहो प्रभु तेरी लीला, आप आए हमने पहचाना नहीं, तो प्रभु तो कहा परंतु पिता से वर्षा के अधिकारी बनने के लायक नहीं बने। फिर उनको पिता परमात्मा का घर तो मिल गया, शांति तो मिल गई, बहुत सारी बाकी धर्म वाली आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, सिर्फ उनको बाबा मुक्ति की प्राप्ति करा देते, शांति घर में जाना है, शांति धाम में जाना है, शांति में बिठा देते। परंतु जिनका बाबा के साथ संबंध टीचर का जुट जाता है, वो आत्माएं योग्य बन जाती हैं ईश्वरीय पढ़ाई और योग से। अगर परमात्मा का पिता के नाते सबको राज भाग देने का पार्ट हो तो सारी आत्माएं स्वर्ग के अधिकारी बन जावें। नहीं, ये देवता पद है, ये स्टेटस पढ़ाई का स्टेटस है, राजयोग से राजाई मिलती है। तो परमात्मा राजयोग की पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, वो आत्माएं पढ़ाई नहीं पढ़ती तो राजाई के संस्कार नहीं आते, या तो शांति धाम में जाकर के बैठेंगी या फिर उनके पास दुख के संस्कार होने के कारण सतयुग की खींच उनको नहीं होती, हमको वापस आना ही नहीं है, वो अनुभव भी नहीं किया है। कई आत्माएं हैं वायलेंस की संस्कार है, कोई कोई धर्म में अपवित्रता का संस्कार भी बहुत है, चार शादियां होंगी इतने जितने रचना होगी उतने ही विकार ज्यादा होंगे, उसके आधार से क्या होगा, वायलेंस अहिंसा हिंसा होगी। तो काम और क्रोध की हिंसा वाले संस्कार सतयुग में तो तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। बाबा ना केवल सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं परंतु डबल अहिंसक बना रहे हैं। डबल अहिंसा वाली आत्माएं सतयुग में जाती हैं, साथ साथ सत्य को पहचान करके आनंद के संस्कार वाली आत्माएं श्री कृष्ण जी को देखेंगे तो झूला झूलते हुए, आनंद का झूला, बच्चों श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे तो भी आनंद का झूला झुलाएंगे। तो उस समय तो बाबा ने कुछ थोड़े शब्दों में सब बातों को बताया कि दूसरे धर्म में बेशक आत्माएं या बाकी सब आत्माएं चाहे कोई भी धर्म की हों वापस घर चली जाएंगी, परंतु श्रेष्ठ कर्म के लिए परमात्मा की श्रीमत से जो कर्म होता है, श्रीमत किसकी मत है, श्रेष्ठ मत है, मनुष्य मत और पर मत फिर भी मनुष्य लेवल की मत है, श्रीमत जब ये निश्चय जिसको हो गया कि हमको किसकी मत मिल रही है, उनकी किस्मत ऊंची हो जाती है, परमात्मा की मत हमको मिल रही है, तो परम सौभाग्य से वो कर्म भी श्रेष्ठ करती हैं और खुशी के संस्कार लेके जाती हैं, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से दूसरी आत्माओं को भी सुख का दान देती है। तो जो मनुष्य आत्माएं दुख लेने के संस्कार बना लिए, वो दूसरे को दुख देंगी ना, सुख की दुनिया में कैसे आएंगी। तुम तो सुखदेव बन रहे हो, सुखदाता के बच्चे बन रहे हो। इसीलिए ये अभ्यास, हम सच्चिदानंद की संतान है, सत्यता को जीवन में लाया है और आनंद के संस्कार बनाए हैं। तो जो आत्माएं खुशी के संस्कार अपने संस्कार बना लेती हैं, वो स्वाभाविक रीति से प्रकृति भी सतो प्रधान है, सुख देने वाली है, तो प्रकृति भी उनको उसी प्रकार से खींचती है, और जिनके साथ उन्होंने संबंध श्रेष्ठ जोड़ा है वो आत्माएं भी उनको खींचती हैं। क्योंकि किस आधार पर वो आत्माएं सतयुग में आएंगी? सतयुग में उतरने का आधार है अपना श्रेष्ठ कर्म, प्रकृति का आकर्षण, प्रकृति के साथ भी संबंध। और जिन आत्माओं के जैसे कर्म श्रेष्ठ है, उनके संबंध से वही आत्माएं आएंगी ना। लक्ष्मी नारायण के अधिकारी जिन्होंने मम्मा बाबा को पूरा फॉलो किया होगा, वही सेकंड पद के अधिकारी बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, तो वो जो डिनेस्टी चलेंगी, राजधानी चलेगी, उसी लेवल का पुरुषार्थ होगा ना। अष्ट पीढ़ियों तक वो ही उतने ही, जैसे 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 चंद्रमा की संपूर्ण प्रकाशित है, उस हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगी ना उनकी कला। तो रामनवमी है तो वो तो नाइन्थ पीढ़ी में हो गए, तो प्रलब डायनेस्टी बदल जाएगी ना। इसीलिए जो खुशी के संस्कार सतयुग वाली आत्माएं, सुख देने के संस्कार वाली आत्माएं, सुख लेने के संस्कार वाली आत्माएं, आनंद में स्थित रहने वाली आत्माएं, दूसरों को आनंद देने वाली आत्माएं, संतुष्ट रहने वाली आत्माएं, संतुष्ट करने वाली आत्माएं, ये देना देवता बने, तो अभी ना केवल ब्राह्मण कर्म करने की बात है, परंतु संगम पर हम बच्चों को बाबा दाता बना रहे हैं। फिर तो बाबा की मुरली इतना डिटेल नहीं था, यानी बाबा ने तो जो क्लास में उस समय बताया पार्टी को, बाबा थोड़ा बताते थे, और फिर दो तीन दिन तक वही वो पार्टी जब है वहीं पर, तो बाबा उसी पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाते थे। यही कारण है कि आप देखेंगे कि बाबा की मुरली में एक थीम नहीं होती, अनेक प्रकार की लहरें होती हैं। हम कहते थे सागर की लहरें, यानी जितनी जिस ग्रुप ने बाबा से कुछ पूछा, तो उसमें शॉर्ट में बाबा उस समय बताते थे, परंतु विस्तार में फिर उस पॉइंट को दूसरे दिन मुरली में, तीसरे दिन मुरली में, ऐसे मुरली में सुनाते थे। तो मैं क्या बता रही थी, ये कहानी बाबा की अनुभव बीच में इसलिए आ गया कि हम जन्म लेते हैं संस्कार अनुसार, तो अभी हम जो देवता धर्म में आत्माएं जाती हैं, तो हम श्रेष्ठ कर्म से संस्कार बना रही हैं, अपने सुख देने के संस्कार बना रही हैं, इसलिए हम देवता धर्म में जाते हैं, वैष्णव जीवन बन जाता है हमारा, पवित्र जीवन बन जाता है, खान पान हमारा इतना शुद्ध बन जाता है। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि श्रीनाथ जी के द्वारे में, श्रीनाथ द्वारे पर 36 प्रकार का भोग, 56 भोग लगता है, सब प्रकार का शुद्ध भोग लगता है, शाही भोग लगता है, तो इस समय जितना हम बाबा की याद में, प्रेम में बाबा को भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग खिलाते हैं, वो हमारे संस्कार हमारी मूर्ति में भी चलते रहते हैं, तो मूर्ति की पूजा भी उसी संस्कार से होती है, ना केवल सतयुग का वो संस्कार सुख की प्राप्ति है। ये श्रेष्ठ कर्म की गति गहन भी है और बहुत समय तक कर्मों का जैसे विकर्मों का हिसाब किताब बहुत समय तक चलता रहता है, श्रेष्ठ कर्मों का हिसाब भी बहुत लंबा चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो पुरुषार्थ करो ना, वो ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए करो। तो एक बार ऐसा था, बाबा सतयुग में तो राजा प्रजा का कोई फर्क ही नहीं है, राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी, दास दासियां भी सुखी, किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को कोई प्रकार की कमी नहीं है, किसी का कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, तो फिर ये आप जो कहते हैं ऊंचा पद प्राप्त करना चाहिए, ऊंचे पद का पुरुषार्थ करो, तो ऊंचे पुरुषार्थ का करने को क्या जरूरत है? सब तो मिल जाए, सब कुछ तो मिल जाएगा सतयुग में। तो बाबा ने कहा, एक जन्म की प्रारब्ध नहीं, एक जन्म की पढ़ाई नहीं है, ये 21 जन्म की पढ़ाई है। कमाई 21 जन्म चलती है, परंतु उस कमाई का फॉलो अप जो है न केवल सतयुग रहता है। जैसे किसी को माँ बाप से प्रॉपर्टी मिलती है, फिर वो प्रॉपर्टी कोई तो उसी जन्म में खाके खत्म करते हैं लौकिक में, कोई फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक प्रॉपर्टी चलती रहती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अभी पुरुषार्थ करती हैं, उसका रिजल्ट सतयुग त्रेता तो प्राप्त है ही, द्वापर कलयुग में भी जब वो आत्माएं आती हैं तो वो शक्ति काम करती रहती है। तो बराबर बुद्धि में समझ में आ गया, वो शक्ति काम करती है श्रेष्ठ कर्म की, वो प्राप्ति आत्मा के अंदर संस्कार बन जाता है, वो उनको भक्ति में भी रहेगा ऊंचा कर्म करना है, भक्ति में भी रहेगा दान करना है। तो बेशक बाघ का फल तो खा लिया उन्होंने, संगम पर हम बाघ लगाते हैं, बाघ का मतलब एक वारी लगाया पौध, हम दान नहीं करते। बाबा ने आज कहा, लिख दो पर्चे में, लिख दो इनविटेशन में कि हम अपने ही तन मन धन से श्रेष्ठ कर्म से दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हम चंदा इकट्ठा नहीं करते, हम भीख नहीं मांगते, हम कोई से दान दक्षिणा नहीं मांगते, परंतु हम अपने ईश्वरीय कार्य में अपना भाग्य बना रहे हैं। तो फिर दान तो नहीं करते ना दान लेते हैं, तो ईश्वरीय यज्ञ में जो हम डालते हैं, तो यह यज्ञ भूमि गोल्डन भूमि है, हम बीज डाल रहे हैं। बीज दान नहीं कहा जाता, धरती को आपने बीज दिया, ये कहेंगे क्या धरती को मैंने बीज दान दिया? नहीं, बीज जितना डाला उस अनुसार वो बीज उगता रहता है, एक बीज एक पेड़ बन करके लख गुना पदम गुना रिजल्ट देता है। तो इस समय हम यज्ञ में बाघ लगा रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहेंगे। तो जब बाघ लग जाता है तो सिर्फ उस कुल को नहीं मिलता, आने वाले कुल को भी मिलता है, पास पड़ोसियों को भी मिलता है, वातावरण को भी मिलता है। इसलिए देवता जब तुम बन जाते हो तो अपने तक सीमित नहीं रहते हो, औरों को भी देने वाले बनते हो। भक्ति में फिर हम खेती करना शुरू कर देते हैं, बोया और काट लिया, बोया और काट लिया, थोड़ा 6 महीने के बाद अगले जन्म में मिल गया। जैसे 6 महीने के बाद खेती काट ली, 5 महीने के बाद खेती काट ली, तो हमको अगले जन्म में मिली। परंतु अभी जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इतना ऊंचा कर्म करते हैं कि वो शक्ति, जैसे ये अभी मैं मिसाल बता रही हूं कि मानो हमने कमरे के पर्दे लगाए, हमने वेलवेट के पर्दे लगाए, हमने और बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा लगाया, हमने पापलिन के कपड़े लगा दिए, खद्दर का लगा दिया, प्लास्टिक का लगा दिया, पर्दा तो काम ने पर्दे का काम तो किया ना, बड़ा सुंदर चमकीली प्लास्टिक भी है, वो भी पर्दे का काम कर रही है। परंतु प्लास्टिक का पर्दा मलमल का प्लास्टिक का जल्दी फट जाएगा, माई मलमल का साधारण कपड़े का जल्दी मैला हो जाएगा और थोड़ा मैटीरियल होगा, कुछ समय और चलेगा। वेलवेट का, मखमल का पर्दा, कर्टन कितने साल चलेगा, मैला भी बार बार नहीं होगा, धोना भी कम पड़ेगा, उसकी ताकत भी काम करेगी। तो ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर जिसने सर्वशक्तिवान से अभी योग लगा के जितने परसेंटेज कर्म करते योग लगाया, विशेष पर्पजली योग लगाया, दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना लेकर के दुआएं प्राप्त की, उन सब का सेवा का बल और फल भी सारा समय कल्प के अंत तक काम करता है। हम ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा 84वें जन्म में भी साधारण तन में रहते हुए साधारण नहीं थे। ब्रह्मा बाबा का जीवन साधारण नहीं था, हीरो का व्यापारी, रॉयल्टी जीवन में, संस्कारों में दिव्यता, क्षमा की भावना, परोपकार की भावना, विश्व कल्याण के प्रति। तो बाबा के संस्कार वो इतने ऊंचे, वो संस्कार कलयुग के अंत तक चले ना, वो ईश्वर इतने ऊंचे संस्कार, जो परमात्मा भी जैसे मैग्नेट को मैग्नेट खींचता है, तो परमात्मा को भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने मैग्नेट बना के खींच लिया। दिव्यता, पवित्रता और श्रेष्ठता के संस्कार, तो जब हम वो संस्कार अपने में भर लेते हैं, अपने में दिव्यता भी धारण कर लेते हैं, तो भले सतयुग में हम कोई बात नहीं, हम तो दासी भी ठीक है, श्री कृष्ण जी के साथ खेलेंगे, श्री कृष्ण जी को खिलाएंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करेंगे, वो तो जैसे भक्ति में आश पूरी हो गई, ऐसे हमारी एक जन्म की आश पूरी हुई, रॉयल्टी तो जीवन में नहीं आई ना। हम राजयोग सीख रहे हैं, इसलिए रॉयल्टी के संस्कार ब्रह्मा माँ से और शिव बाप से आते हैं हमारे में। भगवान राजाओं का राजा, शहनशाहों का शहनशाह है, तो परम पिता की हम संतान है, ब्रह्मा माँ से जन्म लिया है, तो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में हमारे संस्कार दिव्य बनते हैं, ये परमात्मा की देन हमको मिलती है। आपने अपना बना लिया मुझे, तो कैसा बना दिया, जैसे आप शहनशाह हैं, ब्रह्मा बाबा बड़े रॉयल दिव्य हैं, तो माँ बाप से हमको पवित्रता के दिव्यता के संस्कार मिलते हैं। दूसरे संस्कारों की देन है स्कूल से, पढ़ाई से, तो परमात्मा ने फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, विद्यालय में संस्कार बनते हैं। माँ बाप को यह होता है कि बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे स्कूल में जाकर के पढ़े, अच्छी एजुकेशन मिले, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होवे, उसका परिवर्तन उसके अंदर आता जावे, जीवन में दिव्यता आती चली जावे। तो पढ़ाई कितनी ऊंची, वो लौकिक पढ़ाई तो सिर्फ हद की पढ़ाई है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हद की रिसर्च है, हद की हर चीज हद की है। और बाबा कहते, बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे करके बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई से हमारे मैनर्स, हमारे अंदर दिव्य गुण, हमारे अंदर मर्यादाएं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उस संस्कार प्रकट बन जाते हैं हमारे। तो दूसरा एस्पेक्ट है, परमात्मा की देन दिव्य संस्कारों को बना देते हैं, तो टीचर बन करके जो हमको देते हैं वो हर बात में फिर शिक्षा देते हैं कि कैसा भी कोई है, लेवता नहीं बनो। कल की बात पर कहा ना, समझ मिली है ना, पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, चलो किसी का संस्कार अच्छा नहीं है, दुख देने वाला है, निंदा करने वाला है, चुगली करने वाला है, वातावरण को खराब करने वाला है, तो आप उसको लेते क्यों हो? समझ आ गई ना, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेने लिया क्यों? मोटी चीज तो कोई और हो, ये तो सूक्ष्म चीज है, दिमाग में ले ली, दिल में ले ली, मतलब धारण कर ली, तो वो दिल और दिमाग अगर स्वच्छ नहीं है, सच्चाई और सफाई नहीं है, तो फिर दिमाग में ज्ञान कैसे बैठेगा, दिल में बाबा का प्यार कैसे बैठेगा, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं आएगी। इसीलिए मान मिले, शान मिले, महिमा होवे, सम्मान मिले, नहीं लेवता के संस्कार नहीं बनाने हैं, लेवता मनुष्य बन जाता है, लेवता माना मनुष्य, देवता माना देने वाला। तो अभी हम बच्चों को बाबा पढ़ाई पढ़ा के हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली जो खुद सीखा होता है वो विचार से, व्यवहार से, संस्कार से, कर्म से प्रेरणा दे करके दूसरे को सिखाने वाले बन जाते हैं। तो बाबा ने दूसरी देन दी है टीचर बन करके दिव्य बुद्धि की, जिससे हमारी बुद्धि जब दिव्य बनती है तो ऑटोमेटिकली परखने की शक्ति आ जाती है, माया को परखने की शक्ति आती है। परमात्मा पे तो निश्चय हो गया, पर माया को हमने परख लिया तो हम माया जीत बन जाएंगे ना, युद्ध नहीं करना पड़ता, सहज एग्जाम पास कर लेते हैं, चैलेंज को चैलेंज नहीं समझते, ड्रामा के खेल में हीरो समझ करके पार्ट प्ले करते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा ने जन्म देते, ब्रह्मा माँ से हमारा जन्म हुआ, जन्म सिद्ध अधिकार मिला, ब्रह्मा माँ ने सरस्वती का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा, विद्या की देवी सरस्वती है, विद्यालय खोला है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा है, ताकि हमारी बुद्धि दिव्य बने। तो जब हमारी दिव्य बुद्धि बन जाती है तो संस्कारों में दिव्यता आ गई, कर्म श्रेष्ठ होने लगे। इस हिसाब से तीसरे संस्कार बनते हैं संग से। तो बाबा ने कितना सुंदर संग दिया है, ये सत्संग में हम बैठे हैं, रोज की पढ़ाई, अकेले पढ़ो हाँ अच्छा है, हाँ आजकल तो हमको घर में बैठे मुरली मिल जाती है, हम तो नेट पर सुन लेते हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, परंतु संग से जो पढ़ते हैं उसमें उमंग होता है, उसमें सर्विस होती है, उसमें उत्साह भरा होता है, और उसमें वो वातावरण की शक्ति होती है, फर्क है। घर में सुन भी रहे हैं ना, डिसिप्लिन नहीं होगा, अच्छा चलो मुरली पढ़ रहे हैं, अचानक ख्याल आया अरे मुझे दूसरे को फोन करना था, चलो फोन कर लेती हूँ, फिर वो पता नहीं काम पर चला जाएगा, एकाग्रता खत्म हुई। अच्छा थोड़ी नींद आ रही है, एक पानी का गिलास पी लूं, चलो चाय बना लेती हूँ। एक मुरली पढ़ते समय कितने बारी ब्रेक होती है, संग बीच बीच में और होता जाएगा ना, बुद्धि एकाग्रता खत्म होती जाएगी, अंतर्मुखता में फर्क पड़ता चला जाएगा। इसलिए बाबा ये संगठन की जो पढ़ाई है, ये बाबा की पढ़ाई हमारे क्लास बाबा ने खोला है, स्कूल बाबा ने खोला है, यूनिवर्सिटी खोली है, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रुथ्स की प्रैक्टिस कराने के लिए, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, रूहानियत के नियमों को समझाने के लिए। तो बाबा की पढ़ाई हमारे संस्कार बनाती है, साथ साथ संग, खराब संग लग गया ना, सत का संग तारे कुसंग बोड़े, इसलिए बाबा कहते हैं संग में ज्यादा ध्यान रखो। तो कभी कभी व्यर्थ संकल्प, परचिंतन का संग, बाहर का संग तो दूसरी बात है, अंदर में कोई और संग ना आ जावे, इस पर बाबा इस पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। तो संग से संस्कार बनता है, इसलिए बाबा हमको रोज का, सवेरे का सत्संग, दिन भर सत बाबा के साथ, सच्चिदानंद के साथ योग लगा के सत्संग, श्रेष्ठ कर्म करते शाम की योग तपस्या करके सत्संग, इस संग से बनता है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम जो भी कर रहे हैं आत्मा के अपने निजी संस्कार वो सोल कॉन्शियस में अंतर्मुखी होकर के हम अपने जो संस्कारों में साक्षी होकर के अपने अंतर को देखते हैं, बॉडी कॉन्शियस के दुख, सोल कॉन्शियस से सुख, अभिमान और स्वमान में अंतर, वो सोल कॉन्शियस में जब हम बैठते हैं और आत्मिक स्थिति के अभ्यास में परमात्म संबंध में श्रेष्ठ कर्म में सेवा में, ये जो हमारे जीवन का लक्ष्य विष्णु स्वरूप है, चारों आत्मिक स्थिति में चारों ही सब्जेक्ट की जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो आत्मा पढ़ रही है, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहा है, रूहानी शिक्षा हमको दे रहा है, तो रूह के अंदर संस्कार बढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते आत्मा समझ के बैठो, आत्मा समझ के बोलो, आत्मा समझ के देखो, दृष्टि कैसी होवे आत्मा देखने की, मस्तक पर लाली कैसे, मस्तक में विचार कौन से होवे शुभ भावना के, मुस्कराहट कैसी होवे देवताओं जैसी, लाली कैसे होवे, मैं भी लाल तू भी लाल, मेरा बाबा भी लाल मेरा घर भी लाल, आत्मा के अंदर प्रकाश कैसा होवे। तो बाबा रोज हमारा श्रृंगार कर रहे हैं ना, वो आत्मा के संस्कार, जब आत्मिक संस्कार हमारे भर गए तो उस संस्कारों अनुसार हमारा फिर जन्म उसी कुल में परमात्म प्यार भी हमें रहेगा, दैवी संस्कार भी रहेंगे, द्वापर में भी भक्ति में श्रेष्ठ कर्म के संस्कार रहेंगे, कलयुग में सब कैसा भी वातावरण होगा अपना बचाव कर सकेंगे, तो बाबा की तरफ फिर खींच करके आएंगे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ संस्कार बाबा की देन है, फिर उससे ही हम दाता बनते हैं, विधि बाबा बताते हैं ब्रह्मा द्वारा तो विधाता बन जाते हैं, ईश्वरीय शक्तियां ले लेते हैं तो वरदाता बन जाते हैं। तो दाता विधाता और वरदाता से वरदान मिल जाता है, इसीलिए प्रभु ने अपना बना लिया, मेरे क्या कहने हमारे क्या कहने तेरे क्या कहने, तो वाह मेरा भाग्य वाह मेरा बाबा, ये जो बाबा वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा वाह मेरा भाग्य का गीत गाता है, तो यदि जीवन में वाह वाह हो गई तो माया हवा में उड़ गई। इसीलिए अभी हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, बाबा ने अपना हमको बना लिया, हमने बाबा को अपना बनाया तो सारे परिवार को अपना बना लिया, सारे संसार को अपना बना लिया। इसलिए हमारा एक ही स्लोगन है, वन वर्ल्ड वन गॉड वन फैमिली। तो ऐसे परिवार के हम बच्चे हैं। ओम शांति। अभी योग का समय है, समाप्त करते हैं यहीं पर ही। थैंक यू, बहुत अच्छा।